जय ओम विष्णुपाद परमहंस परजगाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नमाचार्य श्रील हरदास ठाकुर की प्रेम से गौशी कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्रद्वैत गदाधर सरस्वती गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन धाम की मायापुर मथुरा वृंदावन धाम की गंगा माई यमुना माई की भक्ति देवी तुलसी देवी की युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की निताय गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरीज टू द संबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू द संबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू द संबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड श्री गौरंग नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामे नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी पिछाड़ने निर्विशेषाम शून्यवादी पाश्चात्य देश ताड़ने जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यनंदा श्री अद्वैत गदाधर्श वासिदी गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय तो आज हमें यहां एक नया चैप्टर शुरू करने को कहा गया है आठवां स्कंद छठा अध्याय पहले श्लोक से शुरू करेंगे एवं स्तुतं सुरगणैर् भगवान् हरीश्वरः तेषमाविर्दुभ्राजा सहस्ताको हृदयधूतिः एवं स्तुतः सुरगणैः भगवान् हरि ईश्वरः तेषमाविर्दुभूद्राजान् सहस्ताको हृदयोद्युतिः श्रीशुक उवाच एवं स्तुतः सुरगणैः भगवान् हरि ईश्वरः तेषमाविर्दुभूद्राजान् सहस्त्राकोर्यदुद्युतिः गो अहेड्
श्री शुक उवाच
श्रीशुक उवाच। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा एवं इस प्रकार स्तुतः स्तुति किए जाने पर सुरगणे देवताओं द्वारा भगवान भगवान हरि ही समस्त अशुभों को मिटाने वाले ईश्वर परम नियंता तेषा ब्रह्मा जी तथा सारे देवताओं के समक्ष आविर्भूत प्रकट हुए। राजन हे महाराज परीक्षित, सहस्त्र 1000 अर्क सूर्य उदय उगते हुए द्योति उनका तेज। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा हे राजन, देवताओं तथा ब्रह्मा जी द्वारा इस प्रकार स्तुतियों से पूजित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि उन सबके समक्ष प्रकट हुए। उनका शारीरिक तेज 1,000,000 सूर्यों के उदय होने के समान था। प्लीज रिपीट। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा हे राजा परीक्षित, देवताओं तथा ब्रह्मा जी द्वारा इस प्रकार स्तुतियों से पूजित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि उन सबके समक्ष प्रकट हुए। उनका शारीरिक तेज 1,000 सूर्यों के उदय होने के समान था। ओम अज्ञान्तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्णा। सभी भक्तों का आज की भागवतम क्लास में हम हार्दिक स्वागत करते हैं। मेरा नाम अक्रूर दास है। मुझे आप सब भक्तों को यहाँ हिंदी की भागवतम क्लास में देख के अत्यंत हर्ष है। मैं बहुत प्रफुल्लित हूँ कि आप लोग इतने सारे नंबर्स में यहाँ हिंदी की भागवतम क्लास में आते हैं, क्योंकि 1975 में सन 1975 में श्रील प्रभुपाद ने यहाँ भागवतम क्लास शुरू की थी, लेकिन मंदिर में और केवल इंग्लिश में। उसके बाद 10 साल तक यहाँ केवल इंग्लिश में क्लास होती थी और 1985 में ये हिंदी की क्लास मैंने पहली बार स्टार्ट की थी। तीन भक्तों के लिए स्पेसिफिकली ये क्लास स्टार्ट हुई थी। तीन लोग ऐसे थे जो एक शब्द भी इंग्लिश का समझते नहीं थे, तो इसलिए वो लोग क्लास में नहीं जाते थे और मेरी आश्रम देखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी टू मेक श्योर के सब लोग सब प्रोग्राम्स में जाएं और सब कुछ करें। लेकिन वो लोग कहते हम जाके क्या करें, हमें तो वहां दूसरों को थोड़ी नींद आती है, हमें बहुत ज्यादा आती है। तो जब हायर अथॉरिटीज को ये समस्या बताई गई तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर उनके लिए हिंदी की क्लास शुरू करो। उस समय मेरे शरीर की उम्र करीब 17-18 साल थी और कोई हिंदी की क्लास देने के लिए तैयार नहीं हुआ, तो मुझे ही देनी पड़ी, जो बोले सो कुंडा खोले। तो क्लास देनी मुझे उस समय भी नहीं आती थी, आज भी नहीं आती है, लेकिन फिर भी कोशिश मैं हमेशा करता हूं गुरु आज्ञा की वजह से। आपको पता है एक बार एक जीबीसी आए एक किसी इस्कॉन मंदिर में और उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे बीच में शोर मचा रहे, भाग रहे, दौड़ रहे, तो उन्होंने क्लास दे दी। उसके बाद वो माताओं को बुलाया, लेडीज को जो संडे स्कूल पढ़ाती थी बच्चों को और बच्चों को लुक आफ्टर करती थी, उनसे रिक्वेस्ट किया कि थोड़ा बच्चों को समझाओ कि भागवतम क्लास में शांति से बैठना चाहिए। तो वो माताजी ने कहा हाँ ठीक है। सारे बच्चों को बुला लिया संडे स्कूल में और सबसे पूछा कि आपको मालूम है कि भागवतम क्लास के समय शांति से चुपचाप बैठ के सुनना चाहिए। तो सब बच्चे बोले यस, हमें मालूम है। तो क्या आपको मालूम है कि ऐसा क्यों करना चाहिए? सारे बच्चे चुप। थोड़ी देर में पीछे से एक 6 साल की लड़की ने हाथ ऊपर किया और बोली मुझे मालूम है। पूछा गया क्या मालूम है, क्यों क्लास में शोर नहीं मचाना चाहिए? तो बेचारी बहुत गंभीरता से बोली क्योंकि भक्त लोग सो रहे होते हैं। उनकी नींद को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। मेरी क्लास में सोना कठिन है। तो यहां पे ऐसा बताया जा रहा है कि यह कथा इस समय समुद्र मंथन की तरफ जा रही है। समुद्र मंथन, जैसे कि आप जानते हो कि देवताओं और असुरों की शक्ति को मिला के हुआ था, तो दोनों को एक साथ में कार्य करना था तभी समुद्र मंथन हो सकता था। तो दोनों को एक साथ में कार्य करने से पहले दोनों को एक दूसरे से संधि करना, म्यूचुअल एग्रीमेंट करना वो जरूरी था। ऐसा नहीं कि आप प्रतिद्वंद्वी होते हुए भी एक साथ में समुद्र मंथन कर सकते हो, क्योंकि उसमें भी कोऑर्डिनेशन चाहिए। एक बार क्या हुआ, मैं आपको एक कथा और बता दूं। मैं कनाडा में रहता हूं और हमारे पास एक शरणागति फार्म है करीब 1,500 acres की जमीन है। तो साल में एक बार वहां एनुअल रथ यात्रा फेस्टिवल होता है। तो जब रथ यात्रा हो जाती है, प्रसादम हो जाता है, लोग दूर दूर से आए होते हैं वहां पे, कम लोग रहते हैं और एनुअल फेस्टिवल के लिए लोग दूर दूर से आए होते हैं। तो ये सब सुबह सुबह होके 1 बजे प्रसाद होके 2 बजे तक प्रसाद खत्म हो जाता है, फिर लोग एकदम से वापस नहीं चले जाते, शाम तक वहां रहते हैं, थोड़ा सा गेम्स करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, स्पिरिचुअल एक्टिविटी, उसके बाद फिर स्टेज प्रोग्राम होता है, डांस ड्रामा सब कुछ। तो जब वो गेम्स हो रहे थे तो किसी ने समुद्र मंथन का गेम शुरू कर लिया। एक गेम इधर चल रहा था और दूसरा उधर। इधर जो चल रहा था, लकड़ी के बड़े बड़े लठ होते हैं, लकड़ी के बड़े बड़े पेड़ों के टुकड़े, उनको इतना बड़ा आरा होता है जितने दोनों हाथ मेरे फैल सकते हैं, इतना बड़ा आरा होता है। एक व्यक्ति इस तरफ से पकड़ के चलाता है, एक व्यक्ति इस तरफ से पकड़ के चलाता है, ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी करते हैं तो वो लकड़ी का गट्ठा जो है वो कट जाता है, लकड़ी का जो तना है। तो उसका कंपटीशन होता है कि कौन कितनी जल्दी काट सकता है। तो वो कंपटीशन, ऑफ कोर्स माताएं हमारी उस कंपटीशन में इतनी इंटरेस्टेड नहीं थी, ज्यादातर सारे कंपटीशन सबके लिए होते हैं जो कोई भी भक्त पार्टिसिपेट करे, लेकिन माताओं को उसमें उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। तो सामने ये समुद्र मंथन का या रस्सा कशी का खेल शुरू हुआ। तो ज्यादातर सब माताएं उधर चली गई, कुछ प्रभु जी लोग गए। तो जैसे ही वहां पे स्टार्ट हुआ, बहुत सारी माताएं थी वो प्रभु जीयों से जीतने लगी। तभी इधर का गेम एंड हो गया, सारे प्रभु जी लोग इधर से फ्री हो गए और उन्होंने जाके उधर रस्सा पकड़ लिया। अब वो इतनी जोर से खींचने वाले थे और माताएं इतनी स्मार्ट निकली, उन्होंने रस्सा छोड़ दिया कि अब हमारा कोई चांस नहीं, छोड़ दो इस रस्से को, इतनी जोर से खींचा सब जाके। तो चाहे आप प्रतिद्वंद्वी हो एक दूसरे के, लेकिन फिर भी खेलना तो टुगेदर ही है। ऐसे मंथन भी टुगेदर ही होगा, मिलके ही होगा, चाहे एक तरफ एक टीम है, दूसरी तरफ दूसरी टीम है, फिर भी खेलने की भी तो संधि है, दुश्मनी में खेल भी तो नहीं होता। तो इस तरह से इस चैप्टर में देवताओं और असुरों की संधि हुई है। ये दोनों मिला के ही इतनी बड़ी शक्ति है, भगवान कहते हैं कि तभी ही समुद्र का मंथन हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। समुद्र के मंथन के लिए पूरा का पूरा मंदराचल पर्वत उठा लिया गया है, बहुत महान पर्वत है, और उसको ऐसे करके हिलाना, श्री हरि ऐसा कहते हैं, ना देवता अकेले कर सकते हैं समुद्र का मंथन, ना असुर अकेले कर सकते, दोनों आपस में मिलेंगे तभी होगा। मैं आपको असुरों और देवताओं के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं, ज्यादातर लोगों को नहीं पता होता। ये जो 84 लाख यो नहीं आए, इसी के अंतर्गत देवता लोग भी आते हैं, असुर लोग भी आते हैं और हम भी हैं। तो 84 लाख योनियों में से 4 लाख योनियां मानी जाती हैं मनुष्यों की योनियां। उन मनुष्यों में देवी देवता इंक्लूडेड हैं, यहां तक कि ब्रह्मा भी इंक्लूडेड हैं। तो टॉप मोस्ट जो 4 लाख में से टॉप मोस्ट है, सबसे बेस्ट ह्यूमन या सबसे बेस्ट जीव इस मृत्युलोक में, वो ब्रह्मा है। उनके बाद ब्रह्म लोक में रहने वाले, सत्य लोक में रहने वाले और लोग, और उनके नीचे जो लोक है उसमें रहने वाले लोग, फिर उनके नीचे जो लोक है, तो काफी नीचे आके तो स्वर्ग आएगा और देवी देवता लोग उस लेवल पे वो 4 लाख योनि में से आते हैं। और असुर लोग उनसे केवल एक नीचे, देवता असुर। इसलिए इनमें आपस में हमेशा युद्ध रहता है, क्योंकि इनकी बराबरी की टक्कर है। आपने सुना होगा देवासुर संग्रामों के बारे में, कभी देवता जीतते हैं कभी असुर भी जीत जाते हैं। तो ऐसा बराबरी में ही संभव है कि कभी कोई जीत गया कभी कोई जीत गया। अगर जो बराबरी नहीं है तो फिर एक ही जीतेगा, दूसरा नहीं जीत सकता। मान लो आपने कभी नहीं सुना होगा कि देवताओं के साथ नरों का संग्राम हो गया, नर मतलब हम लोग, कितनी देर टिकेंगे हम? एक मिनट भी टिकेंगे नहीं। तो फिर संग्राम ही क्या होना है, हम एक सेकंड भी उनके आगे टिक नहीं सकते, असुरों के आगे भी एक सेकंड भी हम टिक नहीं सकते। जब रावण के ऊपर आक्रमण करने के लिए राम लक्ष्मण आ गए तो रावण क्या कहता था, ये भूमि पर रेंगने वाले कीड़े हमारी उच्च असुर दाती के आगे क्या है, कुछ भी नहीं। हम उस पर हंसते, लेकिन वो ठीक कह रहा है, वो बिल्कुल ठीक कह रहा है। वो तो नर के रूप में भगवान थे इसलिए उनको ये सूटेबल नहीं है, लेकिन नर को तो यही सूटेबल है। हम उनके आगे जमीन पर रेंगने वाले कीड़े हैं, उनके आगे उससे ज्यादा हम कुछ भी नहीं है। आजकल लोग इस बात को समझते नहीं है, राक्षस और नर में अंतर नहीं समझते। आपने शायद पता नहीं सुना होगा कि नहीं, अभी जो कुछ दिन पहले होली हुई है, सब लोगों ने होलिका को जलाया और खूब खुशी मनाई, लेकिन कुछ लोग वो कह रहे हैं ये वुमेन को डिग्रेड किया है आपने, स्त्री जाति का अपमान किया है होलिका को जला के, स्त्री जाति का अपमान कर दिया होलिका को जला के। अरे भैया, वो स्त्री नहीं जलाई गई, वो असुरी थी, वो राक्षसी थी, और उसका कर्म देखो क्या करने की कोशिश कर रही थी, और वो हम नहीं जला रहे, वो तो ब्रह्मा के अरेंजमेंट से जली थी, हम तो उसको उस लीला को रिपीट कर रहे हैं। और लोग ऑब्जेक्शन करते हैं कि गलती तो लक्ष्मण की थी, एक स्त्री के नाक काट दी, ये बिहेवियर है, स्त्रियों के साथ ऐसे डील करना चाहिए क्या, स्त्रियों की नाक काट देनी चाहिए? अगर स्त्री कोई गलती करे तो आपको स्त्री पुलिस बुलानी चाहिए। लक्ष्मण को क्या हक था, उसकी नाक काट दी। आप लोग जो आ रहे हो आपका बहुत बहुत स्वागत है, लेकिन आगे को आ जाओ, वहां आप रास्ता बंद मत करो प्लीज, आगे को आ जाओ, यहां बहुत जगह है, आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, लेकिन रास्ता मत ब्लॉक करना। तो उसको कहते हैं के लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। अरे लक्ष्मण उसकी नाक काटने नहीं गया था, वो देवी सीता पे अटैक करने गई थी, उसको ब्रेकफास्ट में खा जाना चाहती थी, और वो वास्तव में एक राक्षसी हमारे जैसे किसी, ये सब राक्षस नरभक्षी होते हैं, हमारे जैसे चार छह को भी ये सुबह के ब्रेकफास्ट में उड़ा सकते हैं, उसके बाद डकार मार के चले जाएंगे। ये नरभक्षी हैं, ये राक्षस हैं। तो क्योंकि आजकल लोग राक्षस और नर में अंतर नहीं समझते, इसलिए मैं बता रहा हूं कि 4 लाख योनियों में अगर जो टॉप के 100 में देखे तो राक्षस आ जाएंगे, और अगर बॉटम के 100 में 4 लाख में सबसे नीचे जो हैं, उसमें जो बॉटम में 100 हैं, उसमें कहीं हमारा नंबर आएगा। तो हमारा और राक्षसों का कोई मुकाबला नहीं है। हम जैसे कई हजार भी मिलके एक राक्षस को कंट्रोल कर लें अगर, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि हमने बहुत बड़ा अचीवमेंट कर लिया। उसमें कोई कहे अरे एक को संभालने के लिए आप 2 जा रहे हो, ये इनजस्टिस है। नहीं, ये इनजस्टिस नहीं है क्योंकि ये स्पीसीज अलग अलग है, आपस में कोई मुकाबला नहीं है। तो देवासुर संग्राम हुआ करता है, और कभी देवता जीतते हैं, कभी सुर जीतते हैं, कभी असुर जीतते हैं। तो यहां पे अब ये कथा समुद्र मंथन की तरफ जा रही है। पहले दोनों देवतागण अपनी फरियाद लेके श्री हरि के पास आए, भगवान के पास आए, और अब उन्हें इस श्लोक में भगवान के दर्शन हुए हैं। आगे भगवान इनको भेजने वाले हैं संधि करने के लिए, और बताने वाले हैं क्या करना है, कैसे करना है, तो कैसे समुद्र मंथन होगा। अगले चैप्टर से समुद्र मंथन शुरू हो जाएगा। तो यहां पे इस श्लोक में यह बताया गया है कि देवताओं तथा ब्रह्मा जी द्वारा स्तुति करने के बाद पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि उनके समस्त प्रकट हुए हैं। मतलब कि देवी देवता लोग, यहां तक कि शिव और ब्रह्मा, ऐसे ही जाके श्रीहरि के दर्शन नहीं कर सकते। नॉक नॉक, कौन है डोर पे? मैं ब्रह्मा। नहीं, ऐसा नहीं है। जाके द्वारपाल को कहें मैं आया हूं ब्रह्मा श्रीहरि के दर्शन करने के लिए, ऐसा भी नहीं है। आपने कई जगह डिस्क्रिप्शन सुनी होगी कि देवी देवता लोग भगवान के दर्शनों के लिए कहां जाते हैं? क्षीरसागर जाते हैं। क्षीरसागर जाते हैं, सुना है ना? और वहां जाके प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं, तब श्रीहरि प्रकट होते हैं, भगवान प्रकट होते हैं। लोग भागवतम पढ़ के, पढ़ा के, सुना के, बहुत से लोग भागवतम पढ़ाते हैं, सुनाते हैं, कथा बताते हैं, लेकिन उनको अभी सही तरह से देवी देवता और भगवान में अंतर नहीं पता। उनके प्रवचनों से हमें समझ में आ जाता है, इनको देवी देवता और भगवान में अंतर नहीं समझ में आ रहा। यहां पे इसी एक सेंटेंस में साथ साथ में लिखा है, देवताओं तथा ब्रह्मा जी द्वारा इस प्रकार स्तुति से पूजित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि। मतलब के देवी देवता ब्रह्मा शिव ये एक तरफ हैं और श्री हरि एक तरफ हैं। इनको भी स्तुति करने से श्री हरि प्रकट होके दर्शन देते हैं या नहीं देते हैं, वो उनकी ऑप्शन है। ऐसा नहीं है कि अगर जो देवी देवता ब्रह्मा शिव आदि उनको पुकारे तो वो अवश्य आंसर दें। तो देवी देवताओं की के द्वारा गाई गई एक फेमस स्तुति है, शायद आप लोगों ने कभी ना कभी गाई होगी, रामायण में जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गो द्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जानै कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करौ अनुग्रह सोई। ये एक बहुत फेमस प्रार्थना है, देवी देवताओं के द्वारा भगवान श्रीहरि की प्रार्थना क्षीर सागर में जाके वो करते हैं और ये प्रार्थना को सुन के श्रीहरि प्रकट होते हैं। ये बहुत अप्रोप्रिएट टाइम है इसको करने का, क्योंकि रामनवमी अभी आने वाली है। रामनवमी के दिन खास तौर पे ये स्तुति की जाती है जिससे भगवान प्रकट होते हैं। जय जय अविनाशी सब घटबासी व्यापक परमानंदा अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा। तो शिव ब्रह्मा और देवी देवताओं के स्तुति करने पे भगवान अपनी ऑप्शन से प्रकट होते हैं। दूसरी बात बताई गई, उनका शारीरिक तेज एक साथ हजारों सूर्य के उदय होने के समान था। भगवान के दर्शन में या दर्शन से सबसे पहले आपको क्या मिलेगा? उनका शारीरिक तेज। वो हमारी तरह सामने आके प्रकट नहीं होंगे, उनका पहले शारीरिक तेज दिखाई देगा। उसी शारीरिक तेज को, उसी प्रकाश को ब्रह्म ज्योति भी कहा जाता है। आप लोगों ने सुना होगा ब्रह्म ज्योति का नाम। ब्रह्म ज्योति वही प्रकाश है जो भगवान के शरीर में से निकलता है। बहुत से लोग ब्रह्म ज्योति को ही सुप्रीम मानते हैं कि ब्रह्म ज्योति ही सबसे बड़ी चीज है। ओ, आप सब लोगों के लिए हम 56 भोग किसी दूसरे मंदिर से लाए, जाने से पहले आप कलेक्ट कर लेना। कई बार हम लाए और ऐसे साथ में वापस ले गए क्योंकि भूल जाते हैं, इसलिए आज प्रभु जी ने बाहर निकाल के रख दिया तो मैंने आपको याद करा दिया। मैं भूल जाऊं तो आप नहीं भूलना। तो उसी को, उसी प्रकाश को, उसी तेज को ब्रह्म ज्योति कहते हैं। ब्रह्म ज्योति क्योंकि इतना ज्यादा प्रकाश है, वो इतनी दूर तक फैलता है कि कई सारे ब्रह्मांड बीच में कवर हो जाए। इसलिए जब आप इस ब्रह्मांड से, इस यूनिवर्स से बाहर निकलेंगे तो बाकी का मृत्युलोक आएगा, और जब मृत्युलोक की कवरिंग को पार कर लेंगे विरजा नदी के उस तरफ जाके, तो पहले केवल प्रकाश ही प्रकाश नजर आएगा। तो जो लोग केवल इतना ही जानते हैं वो उस प्रकाश को ही सुप्रीम मानते हैं। लेकिन प्रकाश अगर कहीं आ रहा है तो कोई प्रकाश पुंज भी होगा। जैसे बाहर हमें इस समय सनलाइट दिख रही है, लाइट तो दिख रही है, सन तो नहीं दिख रहा किसी को यहां कमरे में बैठे। तो लाइट का मतलब क्या है कि सन भी है, खाली लाइट नहीं है, ये प्रकाश है तो उसका प्रकाश पुंज भी है, कहीं से ये प्रकाश आ रहा है। तो जो ब्रह्म ज्योति वाले लोग हैं वो ये गलती करते हैं कि प्रकाश को ही सब कुछ मान लेते हैं। वो इस बात की केयर नहीं करते कि प्रकाश आ कहां से रहा है। भागवतम में कई जगह साफ बताया गया है कि वो प्रकाश स्वयं भगवान के शरीर से आ रहा है। तो वो प्रकाश क्या बोनाफाइड नहीं है? क्या वो प्रमाणिक नहीं है? क्या उसकी रेस्पेक्ट या पूजा हमें नहीं करनी चाहिए, अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि वो प्रकाश भगवान के शरीर से आ रहा है। लेकिन क्या नहीं करना चाहिए, वो ये है कि उस प्रकाश को सुप्रीम मान के वहीं पे रुक जाओ, वो नहीं करना चाहिए। तो जो लोग साकार को नहीं मानते, निराकार को मानते हैं, उसमें से बहुत से लोग वो प्रकाश की ही पूजा कर लेते हैं, प्रकाश को ही भगवान मान लेते हैं, प्रकाश को ही सुप्रीम मान लेते हैं। यहां पे एक सूर्य की बहुत सुंदर कथा है, शायद आपने, आप सब लोग तो वृंदावन में रहते हो, आपने सुनी होगी। यहां पे पीछे परिक्रमा मार्ग में जाओ तो आगे जाके एक स्थान आएगा, द्वादश आदित्य टीला, पहले कालिया दे उसके बाद द्वादश आदित्य टीला। एक्चुअली द्वादश आदित्य टीला के ऊपर ही सनातन गोस्वामी निवास करते थे, और फिर जब उन्होंने राधा मदन मोहन मंदिर बनवाया तो उस टीले पे ही बनवाया। उस टीले की सूर्य के साथ में कथा है, मैं आप सब लोगों से शेयर कर देता हूं। द्वादश आदित्य टीला वो स्थान है जहां पे 5000 साल पहले भगवान कृष्ण वृंदावन में लीला करते हुए जब वो कालिया से युद्ध करने के लिए गए, कालिया से युद्ध किया तो वो युद्ध बहुत समय तक चला, ठंडे पानी में कालिया के साथ युद्ध करते हुए काफी समय भगवान ने अंडर वाटर बिताया। लेकिन क्यों, अब क्या है कि भगवान के शरीर को ये सब चीज का फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी क्योंकि वो मनुष्य लीला कर रहे हैं, वो बार बार लोगों को भरमाने के लिए ऐसी लीला करते हैं कि मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूं, तो बाहर आके उन्होंने ऐसी लीला करने लगा तो बहुत सर्दी है, दांत ठिठुर रहे हैं, शरीर सारा कांप रहा है, जैसे आम बच्चे का सर्दी में ज्यादा देर अंडर वाटर रह जाए तो कांपने लगेगा और सब कुछ, तो भगवान ऐसे लीला करने लगे एक आम बच्चे की तरह। और कोई तो सोर्स ऑफ हीट था नहीं कि कोई हीट कन्वेक्टर लगाओ, कोई जाके एसी ऑन करो हीट पे टर्न करके इसको, सूर्य ही था एक, तो सूर्य की तरफ भगवान ने ऐसे देखा। अब सूर्य को लगा ओ माय गॉड, पहली बार भगवान मेरी तरफ देख के मुझसे स्वयं सेवा मांग रहे हैं, मेरी तरफ देख के मुझसे स्वयं सेवा मांग रहे हैं, अपने इशारे से कह रहे हैं कि और ज्यादा हीट तो, और ज्यादा हीट तो, मेरे शरीर को बहुत सर्दी लग रही, मैं कांप रहा हूं। तो सूर्य ने अपनी सारी शक्ति लगा दी, खूब हीट दी, और फिर भगवान को प्रणाम करके पूछा, तो उसको ऐसे ही मान भंग करने के लिए भगवान ने, कुछ नहीं, तेरी हीट बिल्कुल बेकार है, एज इज लाइक नो हीट, कुछ खास नहीं, मुझे अभी भी बहुत सर्दी लगती, तेरे अंदर हीट की कमी है। तो सूर्यदेव इस बात से नाराज भी हो सकते थे, कुछ भी हो सकते थे, किसी भी तरह से रिएक्ट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने हम्बली रिएक्ट किया, उन्होंने विनम्रता से वो गए और दूसरे ब्रह्मांडों के दूसरे सूर्यों को बुला के ले आए कि भगवान को गर्मी की आवश्यकता है, मैं एनफ दे नहीं पा रहा, प्लीज आप आके मेरे साथ में ज्वाइन हो जाओ, हम सब मिलके भगवान के शरीर को गर्मी देने की कोशिश करेंगे। तो दूसरे सूर्यों ने कहा होगा, अरे हम क्या देंगे गर्मी भगवान को, उनकी गर्मी से तो हम चल रहे हैं, लेकिन उन्होंने नहीं, भगवान इस समय नर लीला कर रहे हैं, और उन्हें वो सूर्य की तरफ देख के वो गर्मी मांग रहे हैं, इसलिए तुम सब चलो। तो 11 और सूर्य पूरी क्रिकेट की टीम इकट्ठी करके ले आए हमारे सूर्यदेव, और सारे वृंदावन के आकाश में 12 सूर्य चमकने लगे, 12 सूर्यों ने फुल गर्मी दी, तो अब भगवान प्रसन्न हो गए, उनके शरीर में से पसीना आने लगा और उस पसीने का एक कुंड बन गया। आज वो कुंड विलुप्त हो चुका है, लेकिन शायद उसको रिवाइव कर लिया जाए। जहां पे आप मदन मोहन जी के लिए पीछे से सीढ़ियां चढ़ के जाते हो, एक तो आगे का रास्ता है, पीछे का परिक्रमा की तरफ से सीढ़ियां चढ़ के जाते हो, ऐसे ऊपर सीधा सीढ़ियां चढ़ के सीधा ऊपर जाते रहो। उसके नीचे जो स्थान है जहां पे आज पार्क सा बना हुआ है, वहां पहले वो कुंड हुआ करता था, हमने खूब देखा है, 80s में 90s में भी होता था। फिर किसी तरह से यहाँ की म्यूनिसपैलिटी ने उसको भर के उसको पार्क बना दिया, लेकिन वो स्थान है जहां पे वो कुंड था, जो भगवान के पसीने का कुंड है, वो द्वादश आदित्य टीला और कालियादेह वाली लीला, ये तीनों आपस में साथ में ऐसे जुड़े हुए हैं। बोलो भगवान सूर्य देव की। तो सूर्य की कथा बता दी, अब आपको नेक्स्ट श्लोक में ले चलते हैं। आज 8 श्लोक कवर करने हैं, अगर जो हो जाएंगे तो, क्योंकि इस श्लोक में कोई तात्पर्य नहीं था, मैंने तो एक एक शब्द आपको ऐसे ही एक्सप्लेन कर दिया। तेनाव सहसा सर्वे देवा प्रति हते क्षण नापश्यनखं दिशः शौणिमात्मनम च कुतो विभुम। श्री भगवान के तेज से सारे देवताओं की दृष्टि चौंधिया गई, वे न तो आकाश दिशाएं व जमीन देख सके, न ही अपने आप को देख सके। इतना प्रकाश, इतना प्रकाश, इतना प्रकाश कि वो अपने आप को भी नहीं देख पा रहे। अपने समस्त उपस्थित श्री भगवान को देखना तो दूर रहा। भगवान का प्रकाश इतना ज्यादा है कि प्रकाश के पीछे स्वयं भगवान ही नजर नहीं आ रहे। यहां साफ लिखा है, अपने समक्ष उपस्थित श्री भगवान को देखना तो दूर रहा, मतलब देवी देवताओं को सामने खड़े हुए भगवान नजर नहीं आ रहे। क्यों नहीं नजर आ रहे? क्योंकि प्रकाश इतना ज्यादा है, प्रकाश ने उनको कवर कर लिया। अब ये कारण आ गया कि लोगों को जो खाली प्रकाश की पूजा करते हैं, ब्रह्म ज्योति की पूजा करते हैं, उन्हें भगवान नजर क्यों नहीं आते? क्योंकि प्रकाश में ही खो गए हैं लोग। तो उनको अपनी दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, शास्त्र की दृष्टि से देखना चाहिए। शास्त्र में तो साफ लिखा है कि इस प्रकाश के पीछे भगवान है भाई, उनको मत मिस करो। लेकिन ये लोग भगवान को मिस कर जाते हैं। नेक्स्ट 3, 4, 5, 6 और 7 श्लोक टुगेदर हैं। मैं आपको अनुवाद पढ़ के थोड़ा थोड़ा समझा दूंगा। शिवजी सहित ब्रह्मा जी ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के निर्मल शारीरिक सौंदर्य को देखा। इसमें ये सारे श्लोकों में भगवान का सौंदर्य का विवरण दिया गया है, बहुत सुंदर विवरण है। इसका प्रॉपर्ट नहीं है, लेकिन मैं आपको एक एक शब्द का मीनिंग इसमें से जितना हो पाएगा बता दूंगा। जिनका श्यामल शरीर मरकत मणि के समान है। एक तो लिखा है श्यामल शरीर, श्यामल शरीर किसका होना चाहिए? कृष्ण का। श्यामल शरीर तो कृष्ण का होना चाहिए। इन लोगों को कृष्ण के दर्शन हो रहे हैं? कृष्ण के दर्शन तो नहीं हो रहे, इनको भगवान श्री हरि के दर्शन हो रहे हैं। भगवान श्री हरि तो कहीं नहीं बताए गए श्यामल, बताए गए भगवान श्री हरि श्यामल हैं। तो ये समझने वाली चीज है, पहले बताया श्यामल शरीर और फिर बताया मरकत मणि। पहले श्यामल शरीर बता देता हूं। श्यामल शरीर का अर्थ श्याम के जैसा शरीर नहीं होता, श्यामल शरीर का अर्थ होता है डार्क। जैसे कहते हैं काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है, कुछ और न आता हो हमको, हमें कीर्तन करना आता है। तो जो गोरे हैं वो गौरांग, और जो गोरे नहीं है, सांवले हैं, डार्क हैं, कुछ भी है, वो सब शामिल। तो श्री हरि गोरे नहीं है। अब गोरे नहीं है तो क्या है, वो नेक्स्ट शब्द में बताया, श्यामल शरीर, डार्क बॉडी, लेकिन मरकत मणि के समान। मरकत मणि कौन कौन जानता है, मरकत मणि क्या होता है? हीरा की तमन्ना है के पन्ना उसे मिल जाए, पन्ना की तमन्ना है कि हीरा उसे मिल जाए। ये मरकत मणि होती है पन्ना। पन्ना होता है कौन से कलर का? ग्रीन। पन्ना होता है ग्रीन। तो श्यामल मरकत मणि के समान, डार्क लेकिन ब्लूइश नहीं, ग्रीनिश। वो किसका रंग है? भगवान राम का भी वही रंग बताया जाता है और श्री हरि का भी वही रंग बताया जाता है। जब श्री हरि परमात्मा रूप में प्रकट होते हैं तो वो गौर हैं। जब वो श्री हरि रूप में प्रकट होते हैं तो वो ग्रीनिश हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य को अपने षडभुज रूप में दर्शन दिए थे। षडभुज रूप मतलब के छह हाथ वाला रूप। तो सार्वभौम भट्टाचार्य को जब छह हाथों में दर्शन दिए तो उन्होंने अपने गौर हाथों में एक संन्यास का डंडा और एक कमंडल धारण किया। फिर उन्होंने अपने श्याम रूप में, ब्लू हैंड्स में वो बांसुरी धारण की। उसके अलावा उनके दूसरे दो हैंड थे वो ग्रीन थे। दो ग्रीन हैंड्स में उन्होंने धनुष और बाण, कि मैं ही राम हूं, मैं ही कृष्ण हूं और मैं ही चैतन्य हूं और तू मुझे ही झुटला रहा है। क्योंकि सार्वभौम भट्टाचार्य मायावादी थे, वो भगवान के साकार रूप को नहीं मानते। और जब भगवान को उसके साकार रूप को नहीं माना, भगवान ने कहा नहीं नहीं आपकी एक्सप्लेनेशन ठीक नहीं है, उल्टा सार्वभौम भट्टाचार्य उनसे नाराज हो गए। अब भगवान स्वयं सार्वभौम भट्टाचार्य के पास जा रहे हैं और कह रहे हैं, मैं साकार भगवान तेरे सामने खड़ा हूं, तू मुझे नकार रहा है, नाराज तो मुझे होना चाहिए, तू उल्टा मेरे से नाराज हो रहा है। साकार भगवान के सामने साकार को नकार दिया। तो कितना बड़ा अपराध है, इसलिए कहा जाता है ये अपराध ही है। जब उनको भगवान ने साक्षात दर्शन दे दिए तो सार्वभौम भट्टाचार्य मान गए कि हां भगवान तो साकार हैं, मैं बेकार में सारा जीवन उनको निराकार मानता रहा और साकार भगवान को झुटलाता रहा। देखो हम भी निराकार भगवान को भी मानते हैं, ब्रह्म ज्योति को भी मानते हैं, परमात्मा को भी मानते हैं, सबको मानते हैं। समस्या ये नहीं है कि हम किसको मानते किसको नहीं मानते, समस्या ये कि किसको झुटलाते हैं हम। हम ना तो साकार को झुटलाते, ना निराकार को झुटलाते, ना ब्रह्म ज्योति को झुटलाते, ना हम परमात्मा को झुटलाते। हम किसी को नकारते नहीं, किसी को झुटलाते नहीं, ये सब भगवान के रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन दूसरे लोग क्या करते हैं, जो मायावादी और तरीके के अलग लोग, ब्रह्मवादी, परमात्मवादी, मायावादी, ये लोग जो कुछ भी मानते हैं वो मानते हैं लेकिन साकार को नकारते हैं। जो वो मानते हैं उसको हम नहीं नकारते, हम उसको भी मानते हैं, लेकिन जब साकार भगवान है तो फिर मैं निराकार को क्यों मानूं? ठीक है, मानता तो मैं हूं, लेकिन जब साकार है तो सुप्रीम साकार है। भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं कि सुप्रीम अहम सर्वस्व प्रभवो मत्त सर्व प्रवर्तते। तो कोई रास्ता नहीं है कि हम किस प्रकार से उस निराकार को सुप्रीम मान ले। निराकार भी भगवान ही है, ब्रह्म ज्योति भी भगवान के शरीर से आ रही है, परमात्मा भी भगवान का रिप्रेजेंटेशन है, हम सब मानते हैं। लेकिन जो मायावादी हैं, ब्रह्मवादी हैं, परमात्मावादी हैं, वो अपने रूप को मानते हैं और भगवान के साकार रूप को नकार देते हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद अपराधी हैं, ये लोग अपराध करते हैं। हम नहीं कर रहे अपराध, क्योंकि हम तो सबको एक्सेप्ट कर रहे हैं। खाली सुप्रीम हम भगवान को मानते हैं। इसके आगे, जिनकी आंखें कमल के फूल के भीतरी भाग जैसी लाल लाल हैं, जो पिघले हुए सोने के पीले वस्त्र धारण किए हैं, जैसे जब हम जोगलाष्टकम गाते हैं तो आता है नीलांबर धर राधा पीतांबर धर्यो हरि, नीलांबर धर राधा पीतांबर धर्यो हरि, जीवने निघने नित्यम राधा कृष्ण गतिर्मम, जीवने निघने नित्यम राधा कृष्ण गतिर्मम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहां बताया जा रहा है कि उनकी आंखें कमल समान है, उन्होंने पीले वस्त्र धारण किए। पीतांबर, पीले वस्त्र होते पीतांबर, भगवान पीतांबर पहनते और राधा रानी नीले वस्त्र पहनती है। नीलांबर, नीलांबर धर राधा पीतांबर धरो हरि। तो भगवान के जो आंखें हैं वो कमल नयन है। ऐसे भगवान के आठ अंग हैं जिनको कमल के समान बताया जाता है। कोई बता सकता है आठ अंग भगवान के जो कमल के समान माने जाते हैं? बता, ऐसे नहीं बताना, हाथ ऊपर करके बताना। कौन बोल रहा है आंखें हाथ ऊपर किया था? वो माता जी ने हाथ ऊपर किया, आप बताइए। कमल नयन, एक दो चार पांच, हस्त कमल सात, और नाभि कमल, वेरी गुड। भगवान के चरण कमल हैं दो, हस्त कमल हैं दो, नयन कमल, कमल नयन दो, छह हो गए। उसके अलावा उनका एक मुख और एक नाभि, ये भी कमल से कंपेयर किए गए। इस तरह से भगवान के शरीर में 8 अंग ऐसे हैं जिनको कमल से कमल के समान बताया गया है। अभी हमारा ये पूरा तो नहीं हुआ है, लेकिन टाइम पूरा हो गया है, इसलिए आपका कोई प्रश्न है, कोई कमेंट है तो वो ले लेते हैं। एनी क्वेश्चन? किसी का कोई प्रश्न? जिन लोगों को प्रसादम के लिए भागने की जल्दी है वो जा सकते हैं, जिनका कोई प्रश्न है या दूसरों के प्रश्नों का उत्तर सुनना चाहते हैं वो वेट कर सकते हैं।
हरे कृष्ण प्रभु जी।
हरे कृष्ण। हाँ
प्रभु जी, जैसे आप बता रहे थे कि जैसे मैं सुन पाई कि जो देवता और असुर में जब आप बता रहे हैं कि कैसे कैसे होता है, तो जैसे हमने हमेशा सुना है कि देवताओं का तो स्वर्ग लोग होता है, वहां रहते हैं, तो असुर का कौन सा लोग होता है? जैसे भू भुवर स्वर ऐसे आते हैं, तो क्या भुवर है असुरों का?
असुर किसी भी लोक में सीमित नहीं है, वो पाताल में भी रहते हैं, वो भूमि पे भी किसी भी समय आ सकते हैं, भुवर में भी, स्वर्ग में भी किसी भी समय एंटर कर जाते हैं, और उसके ऊपर के लोकों में भी कभी भी एंटर कर जाते हैं। तो अगर जो उनका डेजिग्नेटेड स्पॉट है तो वो पाताल है। पाताल में आज भी प्रहलाद महाराज असुरों के राजा है, तो वो उनका स्थान है, लेकिन उनके अंदर इतनी शक्ति है वो कहीं भी कभी भी आते जाते हैं। देवता लोग जो हैं वो भी महर्षि कश्यप की संतान है, और ये जो मेन असुर हैं ये भी महर्षि कश्यप की संतान है। एक पिता के संतान है, एक की माता अदिति, दूसरी की माता दिति। तो इन महर्षि कश्यप और दिति अदिति सब कहाँ रहते हैं? इस पृथ्वी लोक पे। तो इनके संतान जो अदिति के हैं वो ऊपर की तरफ जाते हैं, दिति के नीचे की तरफ जाते हैं, लेकिन क्योंकि वो उनके अंदर इतनी शक्ति है, उतनी एबिलिटी, उन कैपेबिलिटी उनके शरीर में भगवान ने पहले से बिल्ड करी हुई है, वो कहीं भी जा सकते हैं। हम चाहें कि हम इस शरीर समेत स्वर्ग चले जाएं, हम नहीं जा सकते, असुर लोग जा सकते।
एक और क्वेश्चन गुरु जी, जो आपने रामायण का जो बताई ना कि ये आप गा सकते हैं, रामायण अभी आ भी रहा है जैसे रामनवमी, तो वो कहां से, वो स्तुति कैसे प्राप्त हो सकती है?
रामायण, रामायण में भी है और गूगल में
मतलब
भी है।
कौन से खंड में, मतलब पर्टिकुलर?
ये भगवान राम के जन्म से पहले, बालकांड में भगवान राम के जन्म से पहले जय जय सुरनायक वाली स्तुति आएगी, पूरा पेज है।
थैंक यू।
नहीं तो आप गूगल से आसानी से पकड़, जय जय सुरनायक जैसे आप टाइप करोगे तो ये सारी स्तुति आ जाएगी।
थैंक यू ब्रूज।
एनी अदर क्वेश्चन और कमेंट? एक मिनट, ये प्रभु जी का ले ले पहले। क्या बताया? 4 लाख। हाँ, इसका फर्दर एक्सप्लेनेशन कहाँ पे, किसने दी, किस ग्रंथ में दिया गया है मुझे नहीं पता, मैंने तो भक्तों से सुना है, शिल प्रभुपाद से सुना भी सुना है, लेकिन रेफरेंस में आपको लुकअप कर दूंगा वेदाबेस में, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, वेदाबेस में अगर है तो मैं आपको रेफरेंस दे दूंगा। भागवतम में है ना, मेरे ख्याल से भागवतम में है, लेकिन वो तो श्लोक श्लोक संख्या और चैप्टर और कैंटो मांग रहे हैं ना, भागवतम में है लेकिन वो कहाँ है वो मुझे आपको वेदाबेस में ढूंढ के देना पड़ेगा, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना तो मैं आपको दे दूंगा। और कोई प्रश्न?
जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी।
यस,
जैसे आपने बताया कि आपने आपने अभी कहा था लेक्चर में कि भगवान श्री कृष्ण ने एक लीला की थी कि उनको ठंड लग रही है करके, ठंड लग रही है, तो उन्होंने भगवान सूर्य देव से सहायता मांगी, तो उनके जो हिट मिले भगवान को, जैसे तो उनके ठंडी गायब नहीं हुई, ठंड लगते ही रहे, लेकिन सूर्यदेव ऐसा सोचते कि भाई उनको लगा कि भगवान मेरे से सहायता मांग रहे हैं, ऐसा सूर्यदेव के मन में आया, मुझसे सहायता मांग रहे हैं ऐसा सोचा सूर्यदेव ने। लेकिन वो ऐसा ना सोचते हुए सूर्यदेव ऐसा सोचते कि भगवान का मुझे कुछ सेवा करने का मौका मिल रहा है, तो उनको इतने असंख्य
टेबल को उठा के उधर आप इधर से आओ। यस
जी, हरे कृष्णा प्रभु जी,
जी।
मेरा क्वेश्चन इतना ही है प्रभु जी कि जब भगवान श्री हरि को ठंड लग रही थी भगवान श्री कृष्ण को, तो उन्होंने क्या सूर्य देव से यानी कि कहा कि यानी जब उन्हें ठंडी लग रही थी तो भगवान ने सूर्यदेव से सहायता मांगी, जैसे कि मुझे नहीं क्या ठंड लग रही है तो मुझे सूर्यदेव की रोशनी से चाहिए यानी कि गर्म हीट चाहिए, लेकिन क्या सूर्यदेव के मन में ऐसा आया कि भगवान मुझसे सहायता मांग रहे हैं, तो भगवान ने सूर्यदेव के मन में ये सोच आते थे कि भगवान मुझसे सहायता नहीं मांग रहे, मुझे सेवा का मौका दे रहे हैं, ऐसा जब उनके माइंड में सोच आते थे तो उनको इतने असंख्य सूर्य की सहायता नहीं लेना पड़ सकता था अभी, और लेकिन जब ने क्या बहुत सारे सूर्य की सहायता ले ली भगवान ने भगवान को हिट देने के लिए, तो भगवान ने उनका सम्मान करते हुए भी हो सकता है कि उन्हें का सम्मान करते हुए उन्हें यानी कि उनको इतना पसीना यानी गर्मी होने लग गई, तो ऐसा मुझे समझा दीजिए कि सूर्यदेव ये नहीं सोच सकते थे कि हमें भगवान सेवा का मौका दे रहे हैं, सेवा का मौका दे रहे, ऐसा नहीं सोच सकते क्या, उनके मन में ये सोचा है कि हमसे भगवान सहायता मांग रहे हैं, तो उन्हें भगवान नहीं मानते थे।
सूर्य भी जीव हैं।
जी जी,
और उन्होंने क्या सोचा ये तो एक्सैक्टली किसी को नहीं पता।
जी जी।
लेकिन संत लोग एक मिनट सब साथ में नहीं आ जाओ, ओके पहले प्रभु जी